नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज इसकी घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी नई ऊंचाइयों को छूने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में न्यूजीलैंड के $20 अरब से अधिक के निवेश का स्वागत करता है। श्री लक्सन ने कहा कि 9 महीने के रिकॉर्ड समय में समझौतों का संपन्न होना दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि यह समझौता देश में व्यापार को बढ़ावा देकर किसानों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए विभिन्न अवसर सृजित करेगा।
करीब 5,000 पेशेवर, जिनमें योग प्रशिक्षक, शेफ, आयुष क्षेत्र के विशेषज्ञ, आईटी और शिक्षा से जुड़े शिक्षक तथा नर्सें शामिल हैं, को न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए प्रोफेशनल वीजा मिलेगा। इसके अलावा हमने 180 क्षेत्रों को भी खोला है, जिससे पर्यटन, आईटी, टेलीकॉम और ऑडियो विजुअल जैसे क्षेत्रों में भागीदारी के नए अवसर प्राप्त होंगे।
टेलीकॉम, ऑडियो विजुअल।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच साझेदारी को तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नई दिल्ली में भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वर्ष 2023-2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में उपराष्ट्रपति ने सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, सतर्कता और उत्तरदायित्व के उच्चतम मानक बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली पर्वतमाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के माध्यम से पर्वतमाला के संरक्षण के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को मान्यता देता है और समर्थन करता है। नई दिल्ली में श्री यादव ने कहा कि किसी भी नए खनन पट्टे को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित विशेष रूप से संरक्षित और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना, रसद और संपर्क सुविधा के बारे में उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट की परिकल्पना के अंतर्गत अष्टलक्ष्मी राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए देश के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की महत्वपूर्ण रूपरेखा तैयार की गई। सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक और सहायता से केवल 6 महीनों में 660 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी रोकी है। संचार मंत्रालय ने बताया कि 1,000 से अधिक बैंकों, तृतीय पक्ष एप्लीकेशन प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली संचालकों ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को अपनाया है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सक्रिय सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की याचिका पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य लोगों से जवाब मांगा है। ईडी ने निचली अदालत के उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में आज अपना फैसला 22 जनवरी तक सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार आरोपी हैं। गोवा की एक अदालत ने नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा की पुलिस हिरासत की अवधि आज 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। इस नाइटक्लब में 6 दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला कल शाम 7 बजे से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।